يختص برحمته من يشاء. وہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خاص کرتے اپنی رحمت کے لیے, یہ اس کی رحمت ہے, اس کا فضل ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. دیکھیے میں نے جو آپ کو دعا بھی بتائی اس میں بھی کیا ہے, اللہم انی اسألک من فضلک العظیم, کیونکہ اللہ بہت عظیم فضل والا ہے, بہت بڑے فضل والا ہے. سارا فضل ہے ہی اس کے ہاتھ میں, ساری رحمت کے خزانے اس کے پاس ہیں, اور وہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ ایک کو دے دیے تو دوسرے کو مل نہیں سکتے, بہت بڑے ہیں اس کے خزانے. تو پھر کیا کریں, اس سے مانگیں. تو اس سے یہاں پہ ایک اور بات پتہ چلی کہ دنیا کے معاملے میں بھی حسد ہوتا ہے اور بعض اوقات دین میں بھی حسد ہو جاتا ہے, اور وہ بھی جن کے پاس علم, ان میں حسد پیدا ہو جانا کتنی خطرناک بات ہے. پتہ بھی ہے, یہ نہیں کہ وہ پڑھنے والے نہیں تھے, یہ نہیں تھے کہ ان کے پاس کتاب نہیں ہے, بڑے بڑے علماء تھے, تو لیکن پھر بھی دیکھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے, تم جتنی مرضی پلاننگ کر لو کسی کے خلاف کر رہے ہو, تم سوچتے ہو کہ تم چھپ جاؤ گے, تم سوچتے کسی کو پتہ نہیں چلے گا, اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ نے یہاں پہ پتہ چلا کہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ کسی کو, تو اللہ تعالیٰ نے کس کس کو خاص کیا, انبیاء کو خاص کیا, صحابہ کرام کو خاص کیا, صدیقین کو خاص کیا, اس طرح جو بھی لوگ ان کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں کو اللہ خاص اپنے بندے بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو صحابہ بھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں بنے, اتفاق سے نہیں بنے, وہ پتہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے چنے, اللہ نے چنے, اللہ کی خاص رحمت. تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اس کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اس کا فضل, انسانوں کی طرف نہ دیکھیں. تو یہ قوموں میں بھی ہو سکتا ہے حسد, بعض دفعہ قوموں میں بھی ایک قوم دوسری قوم سے حسد کرتی ہے, اور انسانوں میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں اپنے ارد گرد روز ہی دیکھتے ہیں کہ کیسے انسان انسانوں سے حسد کر رہے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ اللہ کا فضل کتنا عظیم ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں, سارے نہیں کہا گیا, سارے ایسے ہیں. دیکھیں یہ بھی قرآن پاک میں کتنی انصاف کی باتیں ہیں کہ جگہ جگہ کہا گیا وَدَّتْ طَائِفَةٌ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, یعنی اہل کتاب میں سے جب ہم کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات, کسی کے اوپر تبصرہ کرنا ہوتا ہے, کسی کی بات کرنی ہوتی ہے, تو کیا کہتے ہیں, سارے جو بلیک ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں, سارے گورے لوگ ایسے ہوتے ہیں, سارے ہندوستانی ایسے ہیں, سارے پاکستانی ایسے ہیں, عرب سارے ہی ایسے ہوتے ہیں, یہ تو ہیں ہی ایسے, یہ تو قوم ہی ایسی ہے, اس طرح ہی ہم کمنٹس دیتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں بات فرماتے, اسی لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے انصاف فرمانے والے ہیں. اللہ کا یہ انصاف ہے نا کہ من, ان میں سے ایسے ہیں, سارے نہیں ہیں. اور ہماری بے انصافیاں دیکھیں کہ جب رگڑنا ہو تو پوری کی پوری قوموں کو ہی رگڑ دیتے ہیں, ایک گروہ نہیں, فلاں زبان بولنے والے ایسے ہوتے ہیں, فلاں زبان کتنے ہمارے ہاں یہ چیز کامن ہے, کوئی بڑے بیوقوف کو قرار دیے جاتے ہیں, کوئی بڑے سخی قرار دیے جاتے ہیں, کوئی بالکل گنوار قرار دیے جاتے ہیں, سب کو ایک ہی لپیٹ میں لے لینا. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا, ہر گروہ کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, مگر ہم کبھی جب کسی کو کی برائی کرنے لگتے ہیں تو اچھوں کو بھول جاتے ہیں, یا اچھائی کرنے لگتے ہیں تو بروں کو بھول جاتے ہیں. سارے کے سارے کبھی بھی نہیں ایسے ہوتا کہ ہمیشہ ایک ہی اس کے اوپر, کوئی اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں, جب یہ کہنے لگے نا پھر سوچ لیا کریں, نہیں سب ایسے نہیں ہوتے. हाँ हो सकता है किसी में अक्सरियत ऐसी होती हो, लेकिन सब में फलां कौम है ना तो होती ही क्रिमिनल है, ये फलां ये तो होते ही बेईमान है, फलां वो तो होते ही कंजूस है। आ रहा है ना जहन में जिन कौमों को हम ये अलकाबात देते हैं, तो नहीं ये करना, इंसाफ को सीखना। मिन अहले किताब, अहले किताब में से कुछ ऐसे हैं, मन जो इन तमन हु बेकार है, अगर तुम अमानत रखो उसके पास, खजाने भी अमानत रख लो, यू अद्दी ही रही तो वो अदा करेगा तुम्हारी तरफ, यानी वो तुम्हें लौटा के दे देगा। वाह, और मिन हूं इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, मन इन तमन हु भी दीनार है, तू अमानत में रख इसके पास दीनार भी एक, ला यू अद्दी ही लाइक, वो नहीं वापस करेगा। एक के पास आप खजाना भी रखें, वो इतना ईमानदार होगा कि आपको वापस लौटा देगा। और इसमें मिसाल है हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु की, यहूदी आलिम थे वो बहुत बड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, निशानियां देखी, कबूल कर लिया इस्लाम। और इनके पास हजारों किसी के दीनार थे, अशरफियां थी, और उन्होंने इमानत समझ के उसको लौटा दिया, यानी कि आप तो मैं मुसलमान हो गया, आप क्या जरूरत है इनको देने की, ये तो इससे फायदा ही उठाएंगे, ये तो उल्टे ही काम करेंगे। नहीं, और इनमें बाज ऐसे भी थे, एक दीनार का भी उनके साथ बिजनेस करो, उसमें हेरा फेरी करेंगे नहीं, अमानत रखाओगे नहीं देंगे, वो कर ही जाएंगे। आप देखते नहीं है हमारे यहाँ भी कई ऐसे लोग होते, कर्ज लिया किसी से और उसके बाद लौटाया ही नहीं, मुकर ही गए बिल्कुल कि कुछ लिया ही नहीं था। और कुछ होते हैं कि जो जरा सी चीज की भी इतनी एहतियात करते हैं कि फौरन लौटाते हैं, तो वो नहीं लौटाएंगे हैं। ऐसे भी हैं, एक दीनार भी उनके पास रखोगे ना उसको भी नहीं अदा करेंगे, इल्ला मा दुम ताले खाइमा, इल्ला ये, सिवाय इसके कि तुम उनके ऊपर खड़े ही हो जाओ, उनके सर के ऊपर उनकी जान ही ना छोड़ो, उनके पीछे ही पड़ जाओ, तो फिर लौटाएंगे जाके। इतने ज्यादा वो इसके अंदर लैक करते हैं अमानतदारी में, इतने बेईमान, यानी दोनों तरह के लोगों का बता दिया गया। ये वो क्यों ऐसे करते हैं, क्यों नहीं लौटाते? तो पहले उनकी देखें तारीफ की एक बात की गई कि कुछ तो ऐसे हैं कि खजाने भी उनके पास हो ना तो वो लौटाएंगे, और कुछ का हाल तो ये देख लो कि एक दीनार भी रख लो तो जब तक तुम उसके पीछे ही ना पड़ोगे वो तुम्हें वापस ही नहीं देगा, खा देगा उसको, हड़प कर जाएगा। तो वजह क्या है, क्यों वो ऐसा करता है, क्यों ये बेईमानी रखता है? जालिका, ये भी अन्ना हूं, बवजह इसके के बेशक वो, कालू वो कहते हैं, लैसा अलैना फिल उम्मीयीना सबील, उम्मीयों के बारे में हमारे ऊपर कोई पूछगिछ नहीं है। सबील का मतलब क्या, कोई पूछगिछ नहीं है, कोई मुआखजा नहीं है, कोई हमारी पकड़ नहीं है, वो हमारे लिए जायज है इनके साथ करना जो भी हम इनके साथ हेरा फेरियां करें। ये ना एक यहूदियों की ये भी खराबी बताई जा रही है आज भी। आप देखें तो बहुत सारे यहूदी आप देखेंगे कि जो बहुत बखील होते हैं, तो उनकी बुखल भी है उनके अंदर, और दूसरे ये कि बाज इनमें से ऐसे हैं कि वो इस हद तक बेईमानी के अंदर हैं कि वो जरा सा पैसा भी उनके पास हो तो उसके अंदर भी वो इधर उधर डंडी मारते हैं। बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि ये दो शख्सियात हैं, एक अब्दुल्ला बिन सलाम और एक काब बिन अशरफ था जो इतना बेईमान था, लेकिन ये सिर्फ उनकी बात नहीं और ओवरऑल भी बात है कि इनमें से बाज ऐसे हैं और बाज ऐसे हैं। और वजह क्या बताई गई कि वो कहते थे हमारे ऊपर उम्मीदों के साथ हम कुछ भी करेंगे इस पे हमारा कोई मुआवजा नहीं है। अब उम्मी कौन है, वही वाली बात दोबारा यहाँ पे आई कि उम्मी उनको कहा जा रहा है जो गैर यहूदी थे, गैर यहूदी यानी जो बाकी अरब को ये लोग उम्मी कहा करते थे, खुद को पढ़े लिखे कहते थे, तो कहते हमारे पर कोई हर्ज नहीं है इसलिए कि हम अहले किताब हैं। और वो क्या है, तो कुछ भी नहीं, उम्मी लोग हैं, इसलिए इनके लिए रूल नहीं अप्लाई होता कि इनके साथ अपनी ईमानदारी से चलना है, ठीक है। और याद रखिए एक बात, एक होती है ना चीज किसी का माल खाना हड़प कर लेना और अंदर दिल में हो कि हाय मैंने क्या किया, ये हराम खा लिया, एक ये होता है कि खा भी लेना और उसको हलाल समझ के खाना, और ये यही करते थे। वो ये नहीं समझते थे कि उम्मीदों का माल खाना कोई हराम है हमारे लिए, ये हम हराम काम कर रहे हैं, उसको हलाल समझ के खाते थे। लई साली ना फिल उम्मीद ना सबील, हमारे लिए जायज है कि हम इनका माल खा लें। ये इनके बारे में हमारे से कोई पकड़ नहीं होगी अल्लाह के यहाँ, कोई पूछगिछ नहीं होगी। कुछ आपको सिमिलैरिटी लग रही है? बहुत से मुसलमान आज क्या ये नहीं कहते? वो तो चलो कहते हैं तो उनकी तो ज़हनियत ऐसी हुई तो वो उनकी समझ आ गई कि भाई वो तो इस तरह से कहते हैं, लेकिन मुसलमान होते हुए बहुत सारे आज कहते हैं कि नहीं हमारे ये लोग तो काफिर हैं, अगर हम इनके पैसे खा लेते हैं, इनका माल हथिया लेते हैं, इनकी चोरियां टैक्स में कर लेते हैं, उनके साथ फ्रॉड कर लेते हैं, कोई झूठे तरीके से इनके माल हथिया लेते हैं, लूट लेते हैं, तो इसमें कोई हर्ज थोड़ी है? वो नहीं सब समझते, झूठ बोल के इमिग्रेशन ले लेते हैं, जाली कागजात के ऊपर वीजे लगवा लेते हैं, गलत बयानियां करके सोशल सिक्योरिटी खाते हैं, और किसी तरह पैसे निकलवाते हैं, कि वो अपना हक समझते हैं, अपना हक समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको क्या फरमाया? ठीक है क्या ये? बास कहते हैं हम दारुल हर्ब में रहते हैं, यानी ये हरबी, ये हमारे साथ जो रहते हैं ये हरबी लोग हैं, यानी हमारे इनके साथ जंग के वो हैं, तो इसलिए जो है ना हमारा इनके साथ ये करना ठीक है। हम जो भी यहाँ पे करें उल्टे सीधे काम, वो हमारे जायज़ हैं इन लोगों के साथ। तो क्या ये सही है बात? इसका जवाब अल्लाह ताला ने यहाँ पे दिया, सेम अप्लाइज जो इनके लिए अप्लाई करता ना वही हमारे लिए करता है। वह यकूलूना, और वो कहते हैं अल्लाह, अल्लाह पर, अल-कदिब झूठ, ये झूठ बात है, तुम अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि तुमको कहते हो उसके ऊपर हमारी कोई पकड़ नहीं होनी, हमें किसी ने नहीं पूछना, ये झूठ है जो तुमने अल्लाह के ऊपर बांधा है। कब अल्लाह ने तुम्हें कहा है कि तुम बस अपने लोगों के साथ तो फेयर रहो? आपको पता है ये अपने आपस के अंदर सूद भी नहीं लेते एक दूसरे से, सूद के बगैर ट्रांजेक्शन करते हैं, और कहते हैं नहीं बाहर वालों से हम सूद लेंगे आज तक भी। तो ये अल्लाह पर झूठ बांधता है, वो कहते हैं अल्लाह पर झूठ, और वो जानते हैं इस बात को कि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बात नहीं कही भी। तो जो भी ऐसा कहे वो अल्लाह के ऊपर बोहतान बांध रहा है, झूठ बांध रहा है, गलत बयानी कर रहा है अल्लाह के ऊपर। कितनी यानी बड़ी बात है ये कि अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना, खुद ही ये बात बना लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के दुश्मनों ने झूठ कहा, जमाना जाहिलियत की तमाम चीजें मेरे कदमों तले हैं सिवाय अमानत के, कि वो हर सूरत में अदा की जाएगी, चाहे वो किसी नेकोकार की हो या बदकार की हो, वो जितना मर्जी बुरा है, वो शराबी, कबाबी, काफिर, हिंदू, यहूदी, वो कोई भी है, तुम्हें नहीं ये काम कि तुम्हारे पास अगर किसी की अमानत है, तुम जो है ना उसका पैसा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, या वो तुम ओ करते हो उसको कोई मनी, तो तुम अब दो ही ना, इसलिए क्योंकि ये तो काफिर। बाज मुसलमान ये कहते हैं कि दारुल हर्ब का सूद भी जायज है, हम इनसे ले सकते हैं क्योंकि ये भी तो ऐसे करते हैं ना, तो सूद हमारा, ये भी तो सूद के ऊपर लेते हैं, लोगों से सूद लूटते हैं, तो हम भी लेंगे फिर इनसे सूद के पैसे। इसी तरह किसी का वाकया है कि वो बिजली चोरी करता था, ऐसे बड़ा ही नमाजी, बड़ा ही टोपी पहनी हुई ये वो, तो उससे किसी ने पूछा भी आप इतनी क्योंकि ये क्यों काम करते हैं आप ऐसे, तो उसने कहा कि मैं फतवा देता हूँ कि इस मुल्क में बिजली चोरी करना जायज है। क्यों? उसने कहा क्यों भाई, और देखे हुक्मरान कितने करप्ट हैं, वो हमें लूट रहे हैं तो हमारे लिए जायज है? अब आप इस तरह के बहुत सारे इस तरह के कमेंट सुन लेंगे अपने मुल्कों में, वहां पर ये चीज है। अगर आपकी पार्टी का कोई नहीं है जो हुकूमत में बैठा हुआ, या कोई आप जिसको समझते हैं ये तो करप्ट है जी, ये हुक्मरान ही करप्ट है, सारे के सारे बेईमान है, तो मेरे लिए तो जायज हो गया, आपके लिए फिर भी नहीं जायज हुआ, आपके लिए फिर भी नहीं जायज है कि आप करप्शन करने लग जाए, कि चूंकि वो गलत है इसलिए जो है ना मैंने भी अब करप्शन करनी है, मैं भी चोरी करूंगा। और अगर मैं किसी काफिर को चीट करूं तो फिर तो बिल्कुल ही ठीक है, और ये करप्ट लोगों को चीट करूं फिर भी ठीक है, बेईमान लोगों को चीट करूं फिर भी ठीक है। अल्लाह ताला ने इसका क्या जवाब दिया है? बला मन औफा बि अहदिही वत्तका फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। बल्कि क्यों नहीं, मन औफा जिसने पूरा किया बि अहदिही अपने अहद को, वत्तका और डर के रहा अल्लाह से, तो अल्लाह ताला मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। अहद कौन सा अहद? अहदे अलस्त भी है, आपको पता है ये भी अहद है जो हमने कलमा पढ़ के अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी के इताअत का हमने एक अहद किया हुआ, लेकिन यहाँ पे कौन सा अहद है जो पूरा करता है अहद को? आप कॉन्टेक्स्ट में देखे ना, आकर कॉन्टेक्स्ट देखे, क्या बात चल रही है पीछे से, आम अहद की बात नहीं हो रही है। यानी ये अहद है कि जो भी कवानीन है किसी भी जगह में आप रहते हैं उन पे भी आप वहां पे कोई अहद करते हैं, उनकी पाबंदी जरूरी है। वैसे तो ये भी अहद है कि अहले किताब से ये अहद हुआ हुआ था कि जो भी नबी आएंगे आपने उनकी माननी है, ईमान लाना है उनको उनके ऊपर, तो ये भी एक अहद था। अगर आप ये देख लें ना कि पीछे से क्या बात आ रही है, जैसे अमानतों की बात आ रही है, एक ऐसी जगह पे रहने के रूल्स की बात आ रही है। अगर हर बंदा ये कहने लगे कि मैंने नहीं मानना क्योंकि हुक्मरान करप्ट है, मैंने नहीं मानना क्योंकि ये हुकूमत काफिर है, मैंने नहीं मानना क्योंकि ये फलाने ऐसे हैं, ये खुद भी तो बेईमानी करते हैं, तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा? फसाद पैदा हो जाएगा। लिहाजा जहां पर भी आप रहते हैं, जिस खित्ते में भी दुनिया के रहते हैं, वहां पे जो भी इंतजामी कवानीन है उनकी पाबंदी जरूरी है, जरूरी है उनकी पाबंदी, चाहे हुक्मरान कैसे भी हैं। और इसमें तमाम ही अहद आ गए, जिस माशरे में आप रह रहे हैं, जिस जगह पे आप हैं, जिसके आप सिटीजन हैं, आप देखें आप इस मुल्क में आए, आपने ओथ लिया है, ओथ हलफ उठाया है कि मैं यहाँ पे कानून की पाबंदी करूंगी, मैं एक पीसफुल सिटीजन की तरह रहूंगी, और उसके बाद कुछ भी, क्या ये अहद नहीं है? या जिस मुल्क के भी आप सिटीजन है वहां आप एक आपकी पाबंदी है उनके साथ, एक अहद है, खामोश अहद है कि मैं यहाँ की सिटीजन हूं तो मैं यहाँ की पाबंदी करूंगी। अब कितने भी हुक्मरान फिस्को फुजूर में मुबतला है ये उनके जिम्मे है, लेकिन हर कोई नहीं उठ के कह सकता नहीं जी मैंने तो नहीं पाबंदी करनी,
उसके ऊपर कहा गया नहीं किसी ने बाहर निकलना, हमने तो नहीं मानना, इसलिए नहीं हमने मानना, ये तो हमारी पार्टी के थोड़ी हैं लोग जो हुकूमत में हैं, या हम नहीं बस मानेंगे, बस एक बगावत का वो एटीट्यूड,
नहीं ये नहीं सही है। हाँ कोई हुकूमत कोई जगह में ऐसा कानून है जो अल्लाह ताला या उसके रसूल की नाफरमानी पे मबनी है, तो फिर तो जाहिर है अल्लाह ताला की जात उसका उसके कवानीन उसकी बात सुपरसीड करेगी हर एक पे। मैंने पिछली दफे भी आपको हदीस बताई थी, ला ताता ली मखलूक फी मासियत अल्लाह, कि किसी मखलूक की इताअत है नहीं, किसी मखलूक की भी नहीं, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे माँ बाप है, चाहे कानून है मुल्क का, चाहे कोई मर्जी भी है, अल्लाह की नाफरमानी जहां पे हो रही होगी वहां पे उसकी मखलूक क्या अल्लाह से भी बढ़ जाएगी आगे? क्या हम उनकी मानने शुरू जाए तो अल्लाह को पीछे कर दें? खालिक की नहीं मान रहे, मखलूक की मान रहे, तो लेकिन अदरवाइज रहन सहन के एतबार से जो भी उन्होंने अपने मुल्क का कानून के मुताबिक एक इंतजाम चलाना है, उसकी उन्होंने टैक्स भी लोगों से लेने हैं, उन्होंने लोगों से और भी कोई जो भी चीजें वो करनी है, तो वो तो फिर उनकी पाबंदी जरूरी है। एक हदीस में आता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इताअत अमीर का भी हुक्म दिया कि जो भी तुम्हारा हुक्मरान है, जो भी तुम्हारा इंचार्ज है, उसकी बात को मानना, चाहे वो हबशी गुलाम ही हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि माशरे का अमनो अमान खत्म हो जाएगा अगर हर कोई अपनी मर्जियां करने लगेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से डरो लोगो, अल्लाह से डरो, यानी तकवा इख्तियार करने का मतलब क्या है, यानी कोई ऐसा काम ना करो कि जिसमें अल्लाह की नाराजगी हो, ये तकवा होता है, नाराजगी के काम से बचना और अल्लाह की रजा का काम करना। और 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, और जो साहिब निसाब है वो खुशी से जकात अदा करें, और जो तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बनाएंगे उनकी इताअत करो, अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो इसके अंदर साफ तौर पे बताया गया है कि ये जो हम अपने एक खुद ही बना लेते हैं ना कि हमने हमारी मर्जी, अब हमने ऐसे करना है, या हमने ये नहीं करना, या हमने ये नहीं मानना, ये नहीं हो सकता। ये भी अहद है और इनको भी पूरा करना है। तकवा अल्लाह को पसंद है, मुत्तकी लोग पसंद है, लेकिन इन अल्लदीन यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अईमानिहिम, वो लोग जो लेते हैं अपने अहदों के बदले में और अपनी कस्मों के बदले में, क्या लेते हैं? समनन कलीला, थोड़ी कीमत, थोड़ी कीमत पे अपने अहद बेच देते हैं, थोड़ी कीमत पे अपनी कस्मों को बेच देते हैं, यानी थोड़े से मफादात के लिए। और अहद में देखिए, आप ये भी ले सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने का अहद था, लेकिन इन्होंने बेच दिया उसको। कैसे बेच दिया? सिर्फ इसलिए कि हमारी इज्जतें रहे, हमारे ओहदे रहे, हमारी पोजीशंस रहे, हमारी लीडरी ना चली जाए। ये थोड़ी कीमत है ना, दुनिया का सारा माल भी मिल जाए तो ये थोड़ी कीमत है आखरत के मुकाबले में। और अपनी कस्मों को पसे पोछ डाल दिया। कस्में भी कैसे बेच देते थे? तो अपने फायदे के लिए झूठ बोल दिया। आप देखें, ये जो अमानतदारी के अंदर जो अमानतदारी आज नहीं नजर आती, और सिर्फ अपने फायदे की खातिर कस्में खा खा के दूसरों को लूट लेते हैं, ये कसम तोड़ना है। और यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में देखें आप, ये सारी बेईमानी जो माल के ऊपर आ रही है कि खजाने भी हों तो कुछ तो दे देते हैं, और कुछ इतनी सी चीज भी नहीं देते, और हड़प कर जाते हैं, और ये कह देते हैं आगे से, नहीं, हमारे तो इजाजत है, हमें तो कोई नहीं इसके ऊपर पूछो नहीं, ये झूठ है अल्लाह के ऊपर। तो जो बेचते हैं इस तरह अल्लाह के अहद को, ठीक है, हकीर सी कीमत पे और अपनी कसम, हकीर सी चीज के ऊपर कसम को तोड़ दिया, उनके लिए क्या है? उनके लिए आखरत में कोई हिस्सा ही नहीं है। कोई हिस्सा नहीं का मतलब क्या है? यानी आखरत में फिर उनको एक्सपेक्ट ना वो करें कि उनको वहां पे कोई खैर मिलेगी, कुछ नहीं उनके लिए वहां। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे कलाम भी नहीं करेगा। वला यंदुरु इलैहिम यौमल कियामती, कलाम करना तो दूर की बात, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। वला युजक्कीहिम, और उनको पाक नहीं करेगा। किस चीज से नहीं पाक करेगा? गुनाहों से, क्योंकि जिसको अल्लाह गुनाहों से पाक कर देगा उस दिन वही जन्नत में जा सकता है। गुनाहों लेके तो नहीं चला जाएगा ना जन्नत में, अल्लाह पाक करेगा। जो जिसको अल्लाह पाक कर दे वही पाक है। अपने कहने से हम पाक नहीं हो सकते कि मैं बड़ी पाक साफ और नेक बीबी हूं। अल्लाह पाक करने वाला है, तो वो अगर पाक ही नहीं करेगा तो फिर क्या होगा इनका? वाला हम आदाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ पे इन लोगों के लिए कहा गया, देखिए इसके अंदर एक इसके शाने नजूल में भी एक वाक्य आता है। शाश बिन कैस का झगड़ा था जमीन के कब्जे के बारे में एक यहूदी के साथ, और ये केस नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। आपने अशहश से पूछा, बताओ तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये तुम्हारी जमीन है? अब सबूत उसको लाना होता है जो दावा करता है कि मेरी मेरा है, मुद्दई जो है ना उसको सबूत लाना होता है, ये कानून है। और ना वो ला सके तो मुद्दा आले जो है, जिसको जिससे वो कह रहा है कि डिमांड कर रहा है कि ये मेरी जमीन है इसे मुझे दिलाओ, वो मुद्दा आले है ना, वो डिफेंडेंट जो है वो कसम खाएगा फिर कि ये मेरी चीज है। तो अब आप सरसरम ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है ये सहाबी रसूल है? उन्होंने कहा, नहीं मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है। तो फिर आपने फरमाया कि फिर अब वो यहूदी कसम खाएगा, तो वो फरमाने लगे, या रसूल्ला वो तो झूठी भी कसम खा लेगा, जो उसको क्या है, वो तो खा लेगा झूठी कसम और हड़प कर लेगा मेरा माल, मेरी जमीन हथिया लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा इंसान अगर झूठी कसम उठा लेता और अपनी कसम की बुनियाद पे कोई हक मार लेता है किसी का, तो अपनी आखरत बर्बाद कर लेता है। तो बहुत से ऐसे मामला होते हैं जिनमें पता होता है कि दूसरा जो है वो बदनीयत है, या दूसरा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने झूठी भी कसम खा लेनी है, फिर भी प्रोसीजर को तो फॉलो करना है, कोई ये नहीं कह सकता नहीं नहीं आप मुझे चीज दे ही दे उसे लेके, क्योंकि वो तो झूठी कसम खा लेगा, तो है ही झूठा। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने झूठी कसम खा ली फिर किसी का हक मार लिया, इस तरह जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी में हदीस है, जो शख्स किसी का माल हथियाने के लिए झूठी कसम खाए वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उस पर गजबनाक होगा, अल्लाह का गुस्सा होगा उसके ऊपर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कितनी सारी बातें आई कि अल्लाह ताला उनसे कलाम भी नहीं करेगा, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। और आप जब किसी से बहुत सख्त नाराज होते हैं ना तो फिर आपका दिल नहीं चाहता उसकी तरफ देखने का भी, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा तक नहीं और उनको पाक भी नहीं करेगा, सीधा उनके लिए अजाब अलीम है। देखें वो चीजें अंदाजा करें जिनको कोई कुछ नहीं समझा जाता, झूठी कसमें खा के धोखा दे के किसी का माल हथिया लिया जाता है, झूठ बोल के किसी का पैसा हड़प कर लिया जाता है, ये कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा गुनाह है, छोटी बात नहीं है ये। एक और हदीस में आता है, अरे बहुत ही डरा देने वाली हदीस है जो मुस्लिम में है, मैं तो परेशान हो गई बहुत इस हदीस को भी पढ़ के, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई भी शख्स कसम के साथ यानी कसम के जरिए कसम खा के किसी को उसके हक से महरूम कर देना, अब जैसे वो किसी ने कसम खा ली कि नहीं जी मेरी जमीन है, मैं कसम खा के कहता हूँ ये मेरी ही है, दूसरा जिसकी थी उसके पास कोई सबूत नहीं है, वो तो सिर्फ दावा कर रहा है ना कि नहीं ये मेरी है, ये कह रहा नहीं मेरी है, तो अल्लाह उसके ऊपर जहन्नुम को वाजिब कर देता है और जन्नत से उसको महरूम कर देता है। ऐसा आदमी चाहे कितना ही नमाजी परहेजगार, कितना तहज्जुद गुजार, कितना मुत्तकी का रूप धारे धारे हुए है, कितना हिजाब और ये और पता नहीं क्या क्या पढ़, अगर किसी ने ऐसे कर लिया तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आपने जो ये फरमाया कि अगर कोई कसम के जरिए किसी को उसके हक से महरूम कर देता है तो उसके ऊपर जहन्नुम वाजिद हो जाती है, जन्नत हराम हो जाती है, तो अगर कोई बिल्कुल ही मामूली चीज हो, यानी बहुत बड़ा माल ना हो, कोई जमीने जायदादों के झगड़े नहीं है, छोटी सी चीज ही हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी पौधे की नाजुक सी छड़ी भी हो, यानी किसी की टहनी है किसी पौधे की, और कसम उठा के कोई दूसरा ले जाता है तो उसके लिए यही वईद है, उसके लिए भी यही है। अल्लाह अकबर, ये माल के मामलात कितने नाजुक हैं, कितने केयरफुल होने की चीज है। यानी छोटा सा बर्तन है, छोटा सा किसी का सूट है, किसी की कोई छोटी सी चीज है, कोई पेंसिल है किसी, कोई आपको कहते हैं कसम खा के ये पेन ना मेरा ही था, इसका नहीं है, यहाँ आप हथियार लेते हैं कोई झूठ बोल के, कोई किसी तरह ऐसे करके, इतनी नाजुक इतनी छोटी चीज के बारे में भी ये फरमाया है, इतनी छोटी चीज कि एक टहनी भी हो तो उसके लिए भी यही वाइद है, कितनी छोटी चीज के लिए उसने अपने आप के ऊपर जहन्नुम को वाजिब कर लिया और जन्नत को हराम कर दिया। तो ये छोटी बातें हैं कोई, आज देखें विरासत में बड़ी बड़ी चीजें हड़प कर ली जाती हैं, फ्रॉड करके बड़ी बड़ी चीजें खा ली जाती हैं और पता भी नहीं चलता, ऐसे लगता है कि जैसे कुछ किया ही नहीं, फिर भी नेक है, फिर भी परहेजगार है, लोगों से कर्जे लिए जाते हैं उसके बाद बिल्कुल मुकर जाते, आओ तुम्हारी इन्वेस्टमेंट करती हूँ इतने पैसे लगा दो, उसके बाद कुछ पता ही नहीं ना पैसे का ना उस बंदे का। बिजनेस में लोगों को पार्टनरशिप दी जाती है और उसके बाद खा लिया जाता है उनका पैसा, इतनी तरह के फ्रॉड है, जमीनों जायदादों के तो इतने फ्रॉड है, प्लॉट खरीदा और पता चला वो तो पहले किसी का था, ये तो सारा जाली है। तो ये जो सारे कसम, जरूरी नहीं होता खड़े होके कोई कसम खाए, मैं कसम खाता हूं कि ये, वो जो आप साइन करते हैं, वो जो आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, वो जो आप कागजों पे वो करते हैं ना सारी ये अपनी, यानी उसको सर्टिफाई करते हैं आप जब सिग्नेचर करते हैं, वो सारी कसम ही है, वो सारी आपने आपने इसको कहा कि मैं इसको एग्री करती हूं, आप ऑथराइज करते हैं उस चीज को, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी कस्में, ये सारी चीजें, अल्लाह हू अकबर, डर लगता है कि अल्लाह हमसे हमसे तो नहीं कभी कोई ऐसी चीज हो गई, किराए पे किसी का मकान लिया और उसके बाद क्या क्या किया,
उसके बाद किस तरह कराया भी नहीं दिया और चले गए वहां से, और झूठ बोल के, झूठी चीजें करके, झूठे पेपर्स बनवा के, चाहे हुकूमतों से लें, ये नहीं कि ये सिर्फ लोगों के साथ है, हुकूमत से इतने पैसे आ, 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 उड़ाने शुरू कर दिए, झूठ, सब कुछ झूठ है उसके अंदर इंफॉर्मेशन। किसने बताया कि यहाँ पे लोग इस तरह से भी करते हैं कि भाई हमें पैसे मिल जाएं तो पता नहीं क्या करते हैं कि भाई अलग अलग दिखाते हैं कि चौहर बीवी से अलग हो गया हुआ है, तो ये सिंगल मदर है तो इसको तो जरूरत है, हालांकि शादीशुदा ही होते हैं। पता है इतनी इतनी तरह की चीजें निकाली हुई है हमने, ऐसे ऐसे लूप होल्स निकाले हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं तो कानून में कुछ फ्रॉड करेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ मिल ही जाएगा ना। तो कितने लोग होंगे जो माली मामलात में स्ट्रेट होंगे। तो अगर कोई कहे नहीं, लेकिन ये हम कौन सा मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो काफिरों का ही तो मुल्क है, उनकी हुकूमत है। अगर कोई ये बात कहता है तो क्या है उसके लिए जवाब है, वह यकूलूनाल्लाहिल्कदिब, तुम अल्लाह पे झूठ बांधते हो, झूठ कह रहे हैं अल्लाह के ऊपर। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि हाँ तुम काफिरों के मुल्क में रहते ना तो बेशक उनको लूटना, बेशक उनके साथ फ्रॉड करना, बेशक खयानतें करना, वहां पे नहीं तुमसे कोई पूछो नहीं, क्योंकि तुम तो मुसलमान हो ना, वो तो काफिर है। कहां कहा है ये, किधर लिखा हुआ है कि जायज है ये? ये तो यहूदियों का काम था, हमने भी वही करना शुरू कर दिया। वो कहते थे ये उम्मी है, नहीं इनके कोई हमारी पूछ नहीं होगी, यही इस काबिल, हम भी आज यही कहते हैं, ये तो काफिर ही है, अल्लाह के दुश्मन ना। लेकिन वैसे उनकी पैरवी करना, वैसे उनके हर फैशन, हर उनके तरीके को ऑप्ट करना, उसमें नहीं हमारी कोई दुश्मनी होती। दुश्मनी सिर्फ इस मामले में है जब उनसे पैसा हथियाना होता है या फ्रॉड करने होते हैं, वैसे उनके हर तरीके को हमने फॉलो करना है, तब उनसे बहुत मोहब्बत होती है हमें। तो ये चीज को देखना कि ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसका कोई हिस्सा नहीं आखरत में, अल्लाह उससे बात भी नहीं करेगा, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, उसको पाक भी नहीं करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है जो भी ऐसा करता है। इन लदीना, ये नहीं फरमाया जो यहूदी हैं उनके लिए ऐसा है, ये अल्लाह का यूनिवर्सल रूल है, जो भी ऐसा करेगा। अपनी अहद को, अहद कहाँ गया, कहाँ कस्में गई, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट गए, थोड़ी सी कीमत पे कि थोड़े दिन का हमें फायदा हो जाएगा, चलो जितने भी अहद हैं। और फिर कसमें तो कोई आज क्या है, एक कसम छोड़े आप 100 कसमें दिला लें कुरान पे हाथ रखा के, फर्क ही नहीं पड़ता। एक आदमी ने कहा मुझे अगर इससे मुझे फायदा होना है तो भाई आप मुझे 100 कुरानों पे हाथ रखवा लें, मैं खाने को तैयार हूं कसम। अदालतों में क्या चलता है, गवाहियों में क्या चलता है, झूठ बोल के, झूठी दस्तावेजात दे के, और क्या क्या नहीं हथिया लिया जाता। और भी कोई है जिसके बारे में ऐसी वही दी गई है, सूरह बकरा में हमने पढ़ा था, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे फिर अल्लाह कलाम भी नहीं करेंगे, वो जो छुपाते हैं हक को, उनके पास इल्म होता है लेकिन उसको छुपा लेते हैं, उनके साथ भी है इसी किस्म की बात, उनके लिए भी थी। इसी तरह हदीस में कुछ लोगों के बारे में आता है जिनसे ना अल्लाह कलाम करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, ना उनको पाक करेगा। 3 किस्म के लोगों का हदीस में आता है। नंबर 1 जो अपना तहबंद टखनों से नीचे छोड़ता है, यानी मर्दों के लिए, यानी टखने को कवर करता है नीचे, और नीचे से ऊपर जुराब पहनना वो ठीक है, ऊपर से नीचे को कपड़े को छोड़ देना पगहर की वजह से। नंबर 2 जो एहसान जताता है, अल्लाह माफ कर दे हमें, हम तो कहीं नेकी कोई कर ही ले तो फौरन ही उस वक्त तक चैन ही नहीं आता जब तक एहसान ही ना उसके ऊपर कर दे, वो जरा सी बात तो करे हमारे सामने फौरन उसके मुंह पे दे मारते, याद नहीं उस वक्त तुम्हारे साथ क्या किया था, पता नहीं उस वक्त ये तुम किस हालत में थी, उस वक्त हम ही आए थे ना, कितने एहसान जताते हैं, किसने तुम्हारी हेल्प की थी, मैंने तो उनके साथ ऐसे किया था, मैंने ये किया था। हाय अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ताला याद रखे ऐसे लोगों की तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे कलाम नहीं करेगा, उनको पाक नहीं करेगा जो एहसान जताते हैं। कौन हम में से ऐसा रह गया होगा जिसने कभी एहसान ही ना जताया, हम तो जरा सा हर्ट हो जाए ना किसी की बात से, या उसने कोई हमारी मर्जी के खिलाफ कर दिया, मैंने उसके साथ कोई निकी की भी थी, फौरन अगली बात जो मुंह से निकलती है वो क्या निकलती, हमने तो देखे इनके साथ ये किया, अरे इन्होंने क्या किया, मैंने तो ऐसे किया इसके साथ, मैंने तो ये किया, उसको मुंह पे ही कहते रहते हैं। और नंबर थ्री, वो जो झूठ बोल के अपना माल बेचता है, यही बात इसके अंदर आ गई, जो झूठी कस्में खा के या झूठ बोल के माल बेचना, नहीं जी हमारी तो कीमतें खरीद भी इतनी नहीं, गाड़ियों के वो जो क्या होते हैं जो माइल बताते हैं उसको पीछे करके झूठ कहना, ये झूठी तो है ना, वो गाड़ी 1 लाख मील चली भी है आपने उसको पीछे करके 50,000 रुपये कर दिया, अब उससे क्या होगा, गाड़ी की ज्यादा से ज्यादा जाहिर कीमत मिलेगी, जो कहना नहीं तो इसमें तो कोई नुक्स ही नहीं है, तो बिल्कुल परफेक्ट है चीज, बिल्कुल अच्छी चलती है, हालांकि आपको पता है कि इसके अंदर खराबी है, झूठ बोल के अपना माल, ये चाहे कसम नहीं भी खाइए, झूठ बोल के माल बेच देता है। अल्लाह तो हमें माफ कर दे, अल्लाह तो हमें माफ कर दे, हम छोटी छोटी चीजें बेचते हैं तो उसी वक्त कितनी दफा ऐसा होता है कि हम झूठ बोल रहे होते, नहीं मुझे तो फलानी तरफ से इतने पैसों की ऑफर आ रही थी। आप देखिए हमारे बाजारों में तो इतना झूठ चलता है, चाहे गाहक है चाहे दुकानदार है, गाहक भी जाके क्या कहते हैं, नो जी मुझे तो वहां से इतने की चीज मिल रही थी, नहीं मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, नहीं मेरी तो कल फ्लाइट है, मैं तो वापस जा रही हूं, तो मुझे तो आज ही ये सिला हुआ कपड़ा चाहिए, हालांकि अभी है भी नहीं फ्लाइट, इतना झूठ। और हमने तो ये चीज पहले इतने की ली थी, वो भी दूसरी तरफ से क्या कह रहा होता है, इतने की मेरी खरीद नहीं है, मैं तो सुबह से इतने की बेच रहा हूं, ये तो ऐसा कपड़ा है तो कभी धुल के भी इसका रंग ना उतरे, ये तो फलानी चीज ऐसी है, झूठ झूठ झूठ। और उसके बाद हम भी जब चीजें बेचते हैं झूठ बोलते हैं, कोई भी चीज का आप देख लें ये भी झूठ है ना, जब नाप तोल में कमी बेशी की जाए ये झूठ है, धोखा तो है ही झूठ भी है। ओके आपने दूसरे को बताया कि मैं आपको 2 किलो चीज दे रहा हूं, हालांकि वो 1.5 किलो, आपने पेट्रोल डाला इतना था, आपने पीछे किया हुआ उसके नंबर, आपने जो स्केल है जिसके ऊपर वजन करना है उसी को पीछे किया हुआ, आज आज इतना दुख होता है, इतना दुख है इस बात पे कि मुसलमानों जिनकी किताब में ये लिखा हुआ है और जिनके नबी ने ये फरमाया वो दुनिया में सबसे ज्यादा बेईमानी और झूठ में मशहूर है, हम किसी गोरे के ऊपर यकीन कर लेंगे, उनकी दुकान से चीज ले लेंगे, कहेंगे ये सच बोलेगा, मुसलमान को कहेंगे ये झूठा ही होगा, इतने हम इस चीज में बढ़ गए हैं ना कि आज हम खुद, किसी और ने हमें क्या कहना है, हम आज खुद कहते हैं, हम खुद नहीं ट्रस्ट करते, हम कहते हैं ये हमें लूट ही लेगा, आप गाड़ी ठीक कराने चले जाओ, आप कहीं सौदा खरीदने चले जाओ, आप किसी घर में अपने किसी काम के लिए किसी को बुला लो, आप कोई जगह पे आप देखो, आप दुकान में किसी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप बड़ी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप खुद देख लो, आप गैर मुल्कों में जिसमें रहते हो वहां पे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं आपको उसमें ज्यादा भरोसा होता है, या फिर जो आप अपने मुल्कों में कोई जमीनों जायदादों के करते हैं उसमें ज्यादा भरोसा होता है, खुद ही आप बता लें, जबकि वहां पे सब मुसलमान होते हैं, आज अपने गिरेबानों में हम झांक के तो हम क्या कर रहे हैं, उन जो गैर मुस्लिम थे उनको तो वो तरीके भी नहीं पता थे जिस तरह से हमने ट्विस्ट करके और कैसे कैसे करके उन झूठ बोल बोल के उनको क्या क्या बता के और हथियाते हैं पैसे, कई लोग जो पता चला कि वो जाके ये कहते हैं कि हम तो बिल्कुल लावारिस हैं, हमारे तो कोई है ही नहीं, सब हमें छोड़ छाड़ के चले गए, अब जो हमारे बिल हैं सारे माफ कर दो अस्पतालों के, हमारे सारे कई औरतें हैं जो डिलीवरी कराती हैं वो कहती हैं हमारे हस्बैंड ही नहीं, हम तो अकेली हैं, अब क्या करेंगे, कहां से, हम दे ही नहीं सकते कुछ, नहीं मैं तो सिर्फ एक चंद एक चीजों का जिनका मुझे मेरे इल्म में आई उनका बता रही हूं, इसके अलावा बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार चीजें, क्या कोई हमारे दीन की तरफ आएगा, क्या कोई हमें मानेगा कि ये सच्चे लोग हैं जो अपनी ट्रांजैक्शंस में इतना झूठ बोलते हैं, इतनी बेईमानियां करते हैं, उनके दीन को कोई कैसे अडॉप्ट करेगा, बताएं, दीन के मामले में सच बोलते हो तो बाजारों में झूठ बोलते हो, तुम तो छोटी सी सुई बराबर चीज बेचने लगते हो तो उसमें झूठ बोल देते हो, कौन तुम पे यकीन करेगा कि तुम बाकी जो बातें बता रहे हो वो सच है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का काम शुरू किया तो उससे पहले सादिक और अमीन कहलाते थे। सादिक और अमीन पहले आपके कैरेक्टर को लोगों के अंदर नोन होना चाहिए कि आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं, फिर उसके बाद आप जो कोई बात करते हैं उसमें भी कोई वजन होता है। अब मेरी और आपकी बात को कोई क्या सुनेगा और क्या समझेगा जब हम दुनिया में क्या मशहूर हैं। अरे लोग डरने लगे हैं, ये इनके साथ कैसे डीलिंग करें। अल्लाह अकबर। इसी तरह जाली डिग्रियां, जाली वीजे, जाली हर चीज को जाली बनाया हुआ। ये क्या झूठ नहीं है? जालसाजी झूठ नहीं है? जाली अंगूठे लगवा लेना, जाली पेपर्स बना लेना जायदादों के, अपने नाम करा लेना चीजें। यार अब कोई जगह है जहां पे हमने ना किया हो कुछ? अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेजना, नाम दूसरी जगह का लिखवा के और वहां से उसके स्कूल में भेज रहे। झूठ झूठ झूठ, कितना झूठ है जिंदगियों में। और फिर वे अपने आप को बिल्कुल सच्चे सवित्रे समझते हैं कि हमसे ज्यादा तो नेक पारसा ही कोई नहीं। अल्लाह तू हमें माफ कर दे। और कौन है लोग जिनसे अल्लाह नहीं कलाम करेगा क्यामत के दिन, ना उनको पाक करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। एक और भी हदीस आती है मुस्लिम में जो जो तीन किस्म के लोगों को बताती है। एक उनमें पहला बूढ़ा जानी, तो बूढ़ा भी हो गया था तूने जिना किया, फिर यानी अगर जवान करता है तो ठीक है उसका भी बुरा है, लेकिन उस वक्त उस एज में आके जिस एज के अंदर वैसे ही इंसान की ये ख्वाहिशात कम हो जाती, उस वक्त भी वो जिना करता है, अल्लाह को उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा है कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला उसको तरफ देखेगा भी नहीं, उससे बात ही नहीं करेगा। नंबर टू, झूठा हुक्मरान। और भाई बाज लोग तो झूठ बोले, वो तो कोई कह सकते हमारी ये मजबूरी है, और तुम तो हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हुए थे जिसमें तुम्हें किसी ने नहीं पूछना था, तुम तो टॉप पे थे, तुम झूठे झूठ बोलते तुम बोल रहे हो, तो यानी उससे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वो एक हुक्मरान है, हुक्मरान बन के भी तुमने ना झूठ छोड़ा। पूरी अथॉरिटी जब तुम्हारे पास है, अब तो कोई कह नहीं सकता मेरी क्या मजबूरी है। और तीसरा, मुतकब्बिर फकीर, यानी तकब्बुर वैसे ही बुरी चीज है, लेकिन फकीर तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं जेब देता कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं पहले ही, फिर भी तुम्हारा तकब्बुर नहीं खत्म हुआ। तो सोचो अगर तुम्हारे पास कुछ होता तो फिर क्या था। वो भी अल्लाह को सख्त नापसंद है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी नहीं तकब्बुर तुमने छोड़ा। एक के पास कोई ताकत नहीं है अब इस वक्त, उसके अंदर कोई शहवत के जज्बात नहीं रहेगा, तब भी उसने जिना नहीं छोड़ा। एक बंदा टॉप पे पहुंच गया हुकूमत के, तब भी उसने झूठ नहीं छोड़ा। तो ये अल्लाह को ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि अगर वो जवान होता फिर क्या करता, फिर तो वो तो नहीं क्या करता, और बूढ़ा होके वो ये कर रहा। एक बंदा अगर वो हुक्मरान बन के नहीं झूठ छोड़ा तो वो आम आदमी होता तो क्या करता। एक बंदा फकीर है तब भी उसके अंदर से तकब्बुर नहीं गया तो उसके पास कुछ होता तो क्या करता। तो ये हैं जो अहदीस में भी कुछ लोगों की आई हैं कि अल्लाह ताला उनके साथ नहीं बात करेगा। ये कितनी इंसान के लिए कितनी डरा देने वाली बात है कि अल्लाह कलाम ना करे। तो ये देखें, ये नमाजें रोजे हमारे ये अपनी जगह, मगर ये धरे के धरे रह गए अगर इन कामों में हम मुलव्विस हो गए। लिस्ट बनाई हदीस से भी और इससे भी और सूरह बकरा की आयत से भी कि कौन से वो काम है जिनके ऊपर अल्लाह नहीं कलाम करेगा, नहीं बात करेगा, ना देखेगा, ना पाक करेगा। कहीं मैं तो इनमें से किसी काम में नहीं हूं, जानते बूझते या अनजाने में। एक और जगह आता है, जिसके पास फालतू पानी है वो फिर भी किसी को नहीं देता। यानी आप सफर पे जा रहे हैं, आपके पास बोतल है, उसमें से खुद पानी पी लिया, नहीं अब मैं किसी को क्यों दूं, चाहे कोई प्यासा है, आगे हो सकता है मुझे ही जरूरत पड़ जाए। वो भी एक इसके अंदर है। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तिलावत सुने।
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم